गोपी ज्ञान वाभ गोपी ज्ञान वाभ सोदानंदन ब्रज जननंदन जमतिया मन जमतिया मन चारे जय राधम भव यदिहारी जय राधम भव यदिहारी गोपी जान वाभ वरधारी गोपी जान वाभ वरधारी सोदानंदन ब्रज जननंदन सोदानंदन ब्रज जननंदन यमतिया अनछाने जय राधम भव यदिहारी जय राधम भव यदिहारी गोपी जान वाभ वरधारी गोपी जान वाभ वरधारी सोदानंदन ब्रज जनरंजन सोदानंदन ब्रज जनरंजन जमना तेरा बनना चाहे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभान प्यारा नया देता राधा शिवा सदि घोष भक्त भे कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवा सदिघोषे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवा सदि घोष भक्त भे। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Radha, Radhe Hari Radha, Radhe Hari Radhe. Jai Radha, Dasri Hari Radha, Dasri Hari Radha. Hare Bhav, Hare Bhav, Hare Bhav, Hare Bhav. Hare Bhav, Hare Bhav. Hare Bhav, Hare Bhav, Hare Bhav, Hare Bhav, Hare Bhav. Hare Bhav, Hare Bhav, Hare Bhav. Jai Om Vishnupad Paramahansa Pavijakacharya Chatara Chatara Shri Shriman. He's the one who shall be eaten in Bhakti Dhanda Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki. Shri Shri Gunathai Ki. Shri Shri Radha Rasvai Lalita Vishaka Ki. Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ki. Iskan Hare Krishna Land Ki. All the holy name day Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The class English mein do, Hindi mein? Hindi? To aaj world ho, ha? Hindi? हाय वो ओके हिंदी में देंगे तो आज वर्ल्ड होली नेम डे है तो इसलिए हमने एक श्लोक भागवतम के छठे स्कंध से चुना है इस विषय पर मेरे साथ केवल अंग्रेजी का ग्रंथ है तो मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और हिंदी में फिर बाद में बोलूंगा ठीक है श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 3 टेक्स्ट 31 तस्मात् संकीर्तनम् विष्णु जगम् मंगलम् अमहासम् महातम् आपि कौरव्या विधि एकांतिका निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनम् विष्णु जगन् मंगलम् अमहासम् महातम् अपि कौरव्या वेद एकांतिका निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनम् विष्णु जगन् मंगलम् अमहासम् महातम् अपि कौरव्या विधि एकांतिका निष्कृतम् तस्मात् संकीर्तनम् विष्णु जगन् मंगलम् अमहासम् महातम् अपि कौरव्या विधि एकांतिका निष्कृतम् Mataji's Shabdarth
Tasmat Isliye Sankirtanam पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन विष्णु विष्णु के जगत मंगलम इस भौतिक जगत के भीतर सब शुभ कार्य अन्हसाम पाप कर्मों के लिए महतामपि महान होते हुए भी कौरव्य हे कुरु वंश के वंशज विधि समझो एकांतिका चरम निष्कृतम प्रायश्चित अनुवाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिसे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें तात्पर्य हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण का नाम अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि वह यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्ति कर सकता है, किंतु इसे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है, प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दूसरा अपराध है। यदि संयोग बस किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए।
तस्मा सम कीर्तनम विष्णु जगन मंगलम महासम महातम अभी कौरव्य वेद एकांतिक निष्कृतम। जैसे मैंने कहा आज हम वर्ल्ड होली नेम डे मना रहे हैं। एक रूप से देखा जाए हमारे लिए तो रोज ही वर्ल्ड होली नेम डे है, ये थोड़ी कि हम साल में एक दिन हरि नाम करते हैं, हम तो रोज ही करते हैं। पर खास करके एक दिन प्रयास कर रहे हैं कि अधिक संख्या में भक्त जाएं और ये संकीर्तन भगवान के नामों का उच्चारण करें। पिछले इतवार का हमने वर्ल्ड होली नेम दिल्ली में मनाया था, और लगभग 2500 भक्त हरिनाम संकीर्तन में गए थे 5 घंटे के लिए। तो इसी प्रकार आज भी प्रयास किया जा रहा है। तो आप सबसे विनती है कि आप सब आइए और चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त कीजिए। तो ये जो आज का श्लोक है, ये श्लोक भागवतम के 6 स्कंद से प्राप्त हो रहा है, और ये श्लोक का उच्चारण यामराज जी कर रहे हैं। यामराज जी क्या कह रहे हैं, किधर हो गया, किधर गया श्लोक, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी अमूलित करने में समक्षम है, इसलिए समकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकेंगे। तो शुक्रदेव गोस्वामी जी इस श्लोक में और आगे के श्लोक में हरि नाम संकीर्तन की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी अनुमूलित करने में समक्षम है। तो बड़े से बड़ा पापी भी हरि नाम के द्वारा बच सकता है, पर इसका यह अर्थ नहीं, जैसे कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है, कि हम जानबूझकर पाप करें और ये सोचें कि हरे नाम के बल पर इस पाप के परिणाम से हम बच पाएंगे। ये श्लोक हमें भागवतम के 6 स्कंद में प्राप्त हो रहा है, और पिछले 3 अध्यायों में आप आजमिल की कथा सुनते आ रहे हो, और संक्षेप में कथा इस प्रकार से है। भागवतम के 6 स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज ने पूछा शुकदेव गोस्वामी से, उन्होंने कहा कि उस धर्म का क्या लाभ जिसके द्वारा आप पछताओ और फिर पाप के कार्य में जुड़ जाओ। जैसे आप देखते हो लाखों की संख्या में भक्त कुंभ मेला में जाते हैं, स्नान करते हैं इस भावना से कि हम अपने कर्मों के को धो दें इस स्नान में शुभ अवसर पर, और फिर लौटकर फिर से पाप करते हैं। उसी प्रकार ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, लोग मस्जिद में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इस भावना के साथ सारा हफ्ता पाप करें और फिर मंदिर जाएं और पाप मिट जाएं। तो परीक्षित महाराज ने इस विषय में एक उदाहरण दिया कि एक हाथी जो है तालाब में स्नान करता है और फिर स्नान करने के बाद, स्नान करता है तो साफ हो जाता है कि नहीं, फिर स्नान करने के बाद वो तुरंत बाहर आकर मिट्टी में बैठता है, और जब मिट्टी में बैठते हैं तो क्या होता है, वही साफ शरीर जो है फिर से गंदा हो जाता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा इस प्रकार के धर्म का क्या लाभ, ये तो एक प्रकार का सौदा है भगवान के साथ। तो इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी जी ने आजीमिल की कथा सुनाई, और शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि प्राचीन पुराणों में एक कथा का वर्णन है जो कि इस प्रकार से है। दूसरे शब्दों में आज से 5000 साल पूर्व जबकि भागवतम का उच्चारण हुआ था उस समय भी ये कहा गया है कि प्राचीन पुराणों में एक कथा प्राप्त होती है, मतलब कि जो पुराना है भागवतम से भी पहले प्रकट हुए थे, और ये कथा जो है आजमिल की जिससे आप सब शायद परिचित हो, ये कथा है लगभग 6-8 हजार साल पुरानी। तो आजमिल कौन था? था भगवान का भक्त, जन्म लिया था ब्राह्मणिकल खानदान में, धर्म के नियमों का पालन कर रहा था, पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे, और एक दिन वो जंगल में गया था पूजा के लिए फूल लाने के लिए। जंगल में कोई घूमने नहीं गया था, जंगल में कुछ शिकार करने नहीं गया था, जंगल में गया था पूजा के लिए फूल लाने के लिए, शुभ कार्य। पर भाव शुभ था, कार्य शुभ था, पर जंगल से लौटते समय उसने देखा एक वैश्य को अपने प्रेमी के साथ, और उस घटना को देखकर उसका मन जो है एकदम तुरंत विचलित हो गया, और उसका विचलित मन उस वैश्य का स्मरण करने लगा भगवान की पूजा के बिना के बजाय। जैसे वो कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी, अब मुंह में राम राम मोरे आपका मन है किधर और। तो आजमिल का मन जो है विचलित होकर गलत स्थानों में, गंद स्थानों विषयों का स्मरण करने लगा। इसके लिए भागवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं मन को बंधु बनाओ, और अगर आपने मन को जीत लिया तो हर स्थिति में आप सफलता प्राप्त कर सकोगे, और अगर आपने मन को नहीं जीता तो आध्यात्मिक सफलता बहुत ही कठिन है। तो इसके पश्चात आजमेल ने इस वैश्य को पहले तो अपने घर में नौकरानी के रूप में रखा, फिर आस्ते आस्ते उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और अपनी पत्नी, माँ बाप, सब वैदिक रीतियों को त्याग दिया, और अपनी वैश्य पत्नी को संतुष्ट रखने के लिए उसे हर प्रकार का पाप का कार्य करना पड़ा। पर एक लाभ यह था, क्योंकि उसके पीछे संस्कृति अच्छी थी, इसने अपने बच्चों को भगवान का नाम दिया था। आजमिल के 10 बेटे हुए थे जिनमें सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? नारायण। और इस बेटे के प्रति इतना गहरा आकर्षण था कि कभी वो बेटा न जैसे मिनटों के लिए दूर भी होता था तो तुरंत कहता नारायण कहाँ हो तुम। तो इस प्रकार लगभग हजारों बार दिन में नारायण शब्द को पुकारता था। भगवान के नामों में क्या शक्ति है। प्राचीन समय यह रिवाज था कि हम बच्चों को भगवान के नाम देते थे, और ये रिवाज ईसाइयों में भी है। ईसाइयों के भी आप नाम देखो, सेंट मेरी, सेंट एंथनी, सेंट पॉल। ये रिवाज मुसलमानों में भी है कि भगवान को नाम दो संतों के नाम के पीछे वगैरह। तो ये वैदिक संस्कृति में भी यही था रिवाज कि आप बच्चों को नाम दो भगवान के नाम के पीछे। तो जब आप बच्चों को पुकारो तो फिर इस बार आपको भी लाभ पहुंचे। पर आजकल क्या रिवाज है, आजकल उन्हें आध्यात्मिक नाम नहीं चाहिए, नाम चाहिए पर कैसे, अंग्रेजी फ्लेवर के साथ आध्यात्मिक नाम, ये रिवाज। तो आज ही मैं हूं, हालांकि बुरी संगत में गिरे थे, किसी की न किसी रूप से नारायण नाम का उच्चारण करते रह रहे थे, और इनका पाप का बोझा इतना बढ़ गया था कि यमराज जी जो मृत्यु के देवता हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया था अब आज मिल को नरक में लाना चाहिए। किस लिए? सजा भुगतने के लिए। तो यमराज ने तीन भयंकर रूपी यमदूतों को भेजा, जैसे आपके बॉम्बे में पुलिस कमिश्नर है और कई पुलिसमैन हैं, तो इसी प्रकार मृत्यु के कमिश्नर हैं यमराज जी। और जो यमदूत हैं उनका सहयोग देते हैं और पापी व्यक्ति को लेकर आते हैं उनके पास घसीटकर अनेक प्रकार के परिणाम भुगतने के लिए। तो यमराज ने कहा कि लेके आओ इस आजमिल को मेरे पास सजा भुगतने के लिए। और तीन भयंकर रूपी प्रतिनिधि को उन्होंने भेजा। तीन क्यों? क्योंकि या हम पाप करते हैं मन के द्वारा, या वाणी के द्वारा, या देह के द्वारा। तीन साधन हैं। यही तीन साधनों का अगर आप सदुपयोग करो तो आपको भगवान के धाम ले जाते हैं, तो यही तीन साधनों का आप दुरुपयोग करो तो आपको वो नरक में ले जाते हैं। जैसे कि दूध द्वारा आपका पेट खराब हो जाता है, पर इसी दूध को आप जब दही के रूप में ग्रहण करो तो खराब पेट ठीक हो जाता है। तो मन, वाणी, देह, ये आपको नरक में भी पहुंचा सकते हैं और ये आपको स्वर्ग में भी पहुंचा सकते हैं। पर आज भी ने जब देखा इन तीन भयंकर रूपी यमदूतों को तो घबरा गए, और घबरा कर उन्होंने नारायण शब्द को पुकारा। और जब नारायण शब्द को पुकारा तुरंत ही भगवान विष्णु के प्रतिनिधि जिन्हें हम विष्णु दूतों के नाम से जानते हैं वो तुरंत वहां उपस्थित हो गए। जो विष्णु दूत हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब अपने परम स्वामी के नाम का उच्चारण सुनते हैं। तो जब विष्णु दूतों ने सुना नारायण शब्द पुकार रहे हैं तो प्रसन्न होकर वो तुरंत वहां उस स्थान में प्रस्तुत हो गए। यमदूत आए थे अजमेर को उसकी आत्मा को नरक में ले जाने के लिए, सजा भुगतने के लिए, पर विष्णु दूतों ने रोक दिया। उन्होंने कहा आप इस व्यक्ति को छू नहीं सकते। तो यमदूत थे, उन्होंने कभी भी इतने खूबसूरत व्यक्तियों को नहीं देखा था। विष्णु दूतों का जो चेहरा है लगभग भगवान विष्णु के समान था, उनकी सुंदरता भगवान विष्णु के समान थी। और जब विष्णु दूतों ने देखा, यमदूतों ने देखा इन विष्णु दूतों को, तो बड़े प्रभावित होकर आश्चर्यचकित भी हो गए थे। आश्चर्यचकित इसलिए हुए थे ये पहली बार है इतिहास में जबकि उनके स्वामी यामराज जी ने भेजा था उन्हें किसी व्यक्ति को नरक में लाने के लिए और किसी ने उन्हें रोक दिया। ये पहली बार है कि यामदूत ने रोक दिया, विष्णु दूतों ने रोका यामदूतों को। इससे पहले यामदूतों के अधिकार को कोई चैलेंज नहीं करता था, तो विष्णु और यामदूतों का वर्तलाप हुआ जो कि आज मेल, हालांकि लगभग बेहोश थे, बहुत हल्की सी होश में थे, वो सुन पाए ये जो वर्तलाप हो रहा था विष्णुदूतों का और यामदूतों का, और इसको सुनने के द्वारा आज मिल समझ पाए हाँ मैंने महान गलती की है, मैंने बुरे संगत में आकर अपने ब्राह्मणिकल संस्कृति को त्यागा, पत्नी माँ बाप बच्चों को त्यागा, उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि मुझे भी पछतावा करना चाहिए। और आजमील फिर गए हरिद्वार में जहां की हजारों सालों के लिए उन्होंने गहरी तपस्या पछतावा किया, हरि नाम को जाप किया। फिर इसके पश्चात एक सोने का जहाज आया, जिसमें सोने का जहाज किस लिए आया, आजमील को लेने के लिए, जिसमें आजमील लौट कर गए। तभी आप कह सकते हो या सोच सकते हो कि अगर हम भी आजमील की नकल करें, हम 10, 15, 20 साल अच्छी तरह भक्ति करेंगे या कर चुके हैं, अब हम ही आजमील के साथ समान बुरी संगत में थोड़ी देर गिरते हैं और इंद्र तृप्ति के कार्य में जुड़ जाते हैं, फिर जब मृत्यु का समय आएगा हमें कृष्णा का नाम लेंगे, हरे प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू दैट, हरे कृष्णा का नाम जरूर लेंगे। मुझे एक व्यक्ति कह रहा था 10 साल मुझे ये घूमने दो, फिर उस पर प्रॉमिस करता हूं मैं गंभीरता से हरि नाम करूंगा। तो आप ऐसे कह तो सकते हो, तो क्या ये स्वीकार किया जाएगा? हा ना, क्यों? क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है, ये सातवां नाम अपराध होगा। सातवां नाम अपराध क्या है? हरे कृष्ण मंत्र के जाप के बल पर पाप करना, ये सोचना कि हम हरि नाम का जाप कर रहे हैं, हम दीक्षित भक्त हैं, हम 25 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं और हमारे पाप मिट रहे हैं, तो अगर हम नया पाप करेंगे तो इसके द्वारा भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक महान आचार्य थे जिन्होंने इस विषय पर अपना तात्पर्य दिया है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा अपने तात्पर्य में कि हालांकि आज अमील बुरी संगत में गिर गया था, हालांकि आज अमील हर प्रकार का पाप का कार्य में जुड़ गया था, पर आज अमील के मन में ये भाव नहीं था कि मैं नारायण का नाम लूं पापों के परिणाम से बचने के लिए। अगर हमारे में ये भाव हो कि हम पाप कर रहे हैं साथ में हरि नाम भी कर रहे हैं और हरि नाम के बल पर ये पाप का परिणाम मिट जाएगा, तो फिर ये क्या बनेगा? सातवां नाम अपराध। और प्रभुपाद जी कहते थे ये सातवां नाम अपराध अनेक अपराधों में सबसे भयंकर, यह भारी अपराध है, ये सोचना कि हरि नाम के बल के जाप के बल पर मैं पाप करूं। तो जब यह घटना बीती, यामदूत जो थे आश्चर्य हो गए थे, क्योंकि जैसे हमने कहा ये पहली बार थी, पहली घटना थी जबकि उनके स्वामी ने उन्हें भेजा था किसी व्यक्ति को सजा भुगतने के लिए लाने के लिए और किसी और ने रोक दिया। तो फिर जो यामदूत थे वो गए यामराज जी के पास, उन्होंने कहा आपसे हमारा एक प्रश्न है, उन्होंने बोला पूछो, क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई किस प्रकार वो गए थे आरजी मिल को नरक में लाने के लिए आपके आदेश के अनुसार, और किस प्रकार उन्हें रोक दिया था यामन दूतों ने, विष्णु दूतों ने। तो आरजी मिल ने कहा और यमराज ने कहा कि मेरे ऊपर भी कोई शक्ति है। कौन है वो शक्ति? कृष्णा के, वो हैं परम स्वामी। जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण, अनेक ईश्वर हैं पर एक ही परमेश्वर है। इस विषय पर चैतन्य चतुर्मिता में कहा गया है एकला ईश्वर कृष्ण अर्थभृतया, एक ही है परमेश्वर परमेश्वर, और बाकी सब जो हैं उनके सेवक हैं या नौकर हैं। और जो अनेक देवता देवियां हैं वो भी इसी विषय को स्वीकार करते हैं, चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, इंद्र जी। भागवत गीता में अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवम, और ये निर्णय किसका है? असीता देवला व्यासा, इन सब का निर्णय क्या है कि कृष्ण भगवान ही परम भगवान है। तो यमराज जी ने ये स्थापित किया अपने प्रतिनिधियों से कि हाँ उनसे ऊपर भी कोई शक्ति है, और कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। आगे यमराज ने कहा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अगर हरि का नाम ले रहा है तो उसको मत छूना, आपका उस पर अधिकार ही नहीं, नॉट योर डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हरि नाम का जाप नहीं कर रहा हो, वो भगवान के सामने राधा कृष्ण के सामने नहीं झुकता हो और भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं कर रहा, उसको तुम छुओ। पर अगर कोई व्यक्ति भी हरि नाम का जाप कर रहा है और झुक रहा है भगवान के सामने तो फिर उसको नहीं झुकना, उसको नहीं छूना। तो आप कहोगे महाराज ये तो बहुत अच्छा है, अभी हम यमराज के नजर से पार, हम जो भी करेंगे यमराज हमें छू नहीं सकते। यमराज नहीं छू सकते हैं पर भगवान विष्णु भी नजर रख रहे हैं। यमराज ने कहा कि आपका अधिकार केवल उन पर है जो विष्णु का नाम कभी लेते नहीं। कई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो विष्णु का नाम नहीं लेते। आप भारत में भी प्रयास कर सकते हो, कई हैं जो नहीं लेंगे भगवान का, जैसे आज के वातावरण में कई कह रहे हैं कि रामचंद्र जी कभी प्रकट ही नहीं हुए, क्या प्रमाण है आपके पास? अब वो कह रहे हैं महाभारत रामायण ये सब तो कल्पना थी, माइथोलॉजी, ये तो वास्तविकता में ग्रंथ है ही नहीं, ये घटनाएं बीती ही नहीं। तो कई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि हरि नाम को नहीं लेते, भगवान की वाणी के साथ अपना भावत जोड़ते हैं। तो यमराज ने कहा भविष्य में उनको मत छो जो हरि नाम लेते हैं। मतलब कि हरि नाम का क्या महत्व, जो व्यक्ति हरि नाम ले रहा है वो यमराज के प्रभाव से नजर से दूर हो जाता है, दूसरे शब्दों में वो तुरंत भगवान कृष्ण के नजर में आ जाता है। वैसे तो हम सब भगवान कृष्ण के नजर में हैं, पर भगवान खास करके क्या कहते हैं, हे अर्जुन बोलो, पूरे विश्व को सूचना दो मेरा भक्त जो है कभी नहीं होता। तो इस अध्याय में यमराज जी की कथा है, यमराज जी का उपदेश है, और इस अध्याय के समाप्ति में अब शुक्रदेव गोस्वामी जी चार श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। और शुक्रदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी अनुमूलित करने में सक्षम है। तो आप कहोगे तो इसका मतलब यह है कि हम हरि नाम का जाप करते हैं पापों को मिटाने के लिए। एक समय चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हो हरिदास ठाकुर एक सभा में गए थे, उस सभा की योजना की थी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने और चाचा ने गोवर्धन मजुमदार और उनके भाई हिरानिया मजुमदार, ये दो उस वक्त आज से 500 साल पूर्व सबसे धनी खानदान थे भारत में। उस समय उनकी आमदनी 5 लाख रुपए साल की, अंदाजा लगाओ। तो उस सभा में हरिदास ठाकुर भी पहुंचे। हरिदास ठाकुर उस समय बालरामाचार्य के घर में निवास कर रहे थे और हरिदास ठाकुर पहुंचे उस सभा में और हजारों संत महात्मा बैठे थे। तो हरिदास ठाकुर के पिता ने और बालरामाचार्य ने हरिदास की बड़ी प्रशंसा की, ऐसे लगा कि हजारों मुंह से लोग हरिदास का गुणगान कर रहे हैं। तो हरिदास को जब लोगों को कहा गया कि हरिदास दिन में 3 लाख बार हरि नाम करते हैं, तो लोगों ने पूछा आप हरि नाम इतना क्यों करते हो। किसी ने कहा हम हरि नाम का जाप करते हैं पापों को मिटाने के लिए। किसी और ने कहा कि हरि नाम का उच्चारण करते हैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए। हरिदास ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हरि नाम का असली भाव ये नहीं कि आप पापों को मिटाएं। उन्होंने कहा हरि नाम का ये मतलब नहीं कि आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिले, हालांकि वह संभव है। हरि नाम का असली उद्देश्य क्या है, आपके हृदय में भागवत प्रेम अनुकूल करने के लिए, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, कृष्ण प्रेम अनुकूल करने के लिए, ये है हरि नाम के उच्चारण का असली लाभ। शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा था, ये बताओ शुकदेव गोस्वामी जी, किस प्रकार कलयुग में लोगों का उद्धार होगा। जिसके उत्तर में परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी ने क्या कहा, कले दोषे निधि राजन अस्ते का महागुना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम कि कलयुग में अनेक दोष हैं पर एक गुण है इस कलयुग में, क्या है वो, हरि नाम का उच्चारण। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि महान भगवान नाम के कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन इस कलयुग का उपाय है। जैसे कि प्रभु जी उदाहरण देते थे, अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज। ये नहीं कि चाहे कुछ भी बीमारी हो आप ड्रग स्टोर में जाकर आंख बंद करके कोई दवाई उठाते हो, हर दवाई का खास इलाज है। उसी प्रकार इस कलियुग का रोग पीड़ा क्या है, कलियुग के लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में किया गया है। भागवतम के प्रथम स्कंद में रामेश्वरण के संतों ने क्या कहा कि कलयुग में लोगों की अध्यात्मिकता में बहुत कम रुचि होगी। ये बात सच है कि जो आज अगर लोगों की रुचि है भी तो नाम के लिए रुचि है। लोग आते हैं हजारों की संख्या में यहाँ भी आपके मंदिर में दर्शन के लिए, पर आज जब लोगों को कहा जाए कि हरि नाम करो, सोलह माल करो, नियमों का पालन करो, तो फिर बहुत कम संख्या में लोग तैयार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कलयुग में रोग ही रोग है पर एक गुण है इस कलयुग में, क्या, कृष्ण के कीर्तन के द्वारा। अगर आप ध्यान से देखो, प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में इस संस्था की स्थापना कैसे की। प्रभुपाद जी तो इंग्लैंड अमेरिका गए थे 200 सेट भागवतम का प्रथम स्कंद साथ लेकर, और एक ढोलकी ले गए थे भारत से। तो प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में जब रहे तो वहां टॉमकिन क्वेस पार्क, जो शहर का प्रसिद्ध पार्क है, वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते थे, जिसके द्वारा भक्त आस्ते आस्ते जुड़े भक्ति योग में। तो इसे आप देख सकते हो कि हरि नाम संकीर्तन जो है, इसका उपयोग आप विश्व के हर वातावरण में कर सकते हो। जैसे कि इस समय एक उत्सव चल रहा है रशिया में, ब्लैक सी में, जिसमें 3,500 भक्त कीर्तन कर रहे हैं और रशियन भक्त सब और हरि नाम कर रहे हैं। तो हरि नाम जो है इस कलयुग का उपाय है, इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों का, पर जैसे मैंने कहा था, इसका ये अर्थ नहीं कि आप जानबूझकर पाप करना शुरू करोगे या करोगे और ये सोचोगे क्योंकि आप हरि नाम ले रहे हो, क्योंकि आप दीक्षित हो इसलिए आप पापों के परिणाम से बच जाओगे। ये जो सातवां नाम अपराध है, ये सब अपराधों में सबसे भारी नाम अपराध है, क्योंकि भक्त की इच्छा रहती है कि हरि नाम के बदले में कोई सुख नहीं प्राप्त हो। प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े थे, केवल उनका एक दोष था जो ये था कि वो भगवान विष्णु के उपासक थे। जब उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो नरसिंहदेव भगवान ने पूछा, भांगो मेले मेरे क्या इच्छा है तुम्हारी, मेरे कारण तुम्हें इतने कष्ट भुगतने पड़े। तो प्रहलाद ने कहा, भगवान मैं आपसे व्यापार करने नहीं आया, मैं व्यापारी नहीं हूं कि क्योंकि मैंने आपके कारण कष्ट भुगता उसके बदले में मैं आपसे कुछ मांगू। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो क्या दो, भक्ति। उन्होंने कहा, अगर आपने मुझे देना है तो क्या दो, केवल शुद्ध भक्ति दो। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। तो ये संपूर्ण जगत में सबसे शुभ कार्य है। कई बार जब आप प्रचार करते हो लोगों को, वो कहते हैं आप लोग मंदिर क्यों बनाते हो, या हरिना में क्या पड़ा है, आप आई कैंप करो, हॉस्पिटल खोलो, आपको गरीबों को शादी कराओ, उनकी उनको किताबें दो, शिक्षा दो, स्कूल खोलो। पर ये जो संकीर्तन आंदोलन है ये सबसे शुभ कार्य है। इसमें इतनी शक्ति है कि ज्ञान से अज्ञान से कोई व्यक्ति भी हरि नाम को स्वीकार करेगा उसके द्वारा क्या उसे केवल लाभ ही पहुंचेगा। इस आजमिल की कथा में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि हरि नाम में, भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि अज्ञानता से भी अगर कोई नाम ले तो नाम का लाभ होगा। और इस विषय में प्रभुपाद जी अधिक अक्सर उदाहरण देते थे कि एक छोटे निर्दोष बालक भी अगर अपना हाथ आग में रखेगा तो आग ये तो नहीं कहेगी तुम निर्दोष बालक हो, अज्ञान हो, तो तुम्हारे हाथ को मैं नहीं जलाऊंगी। तो उसी प्रकार ज्ञान से या अज्ञान से किसी बहाने आप हरि नाम का उच्चारण करो, हरि नाम को सुनो। जैसे कि आज हम लोग वर्ल्ड होली डे में महासंकीर्तन करेंगे, इस्कॉन का हर केंद्र इस महीने वर्ल्ड होली डे मना रहा है अधिक संख्या में हरि नाम करके। तो जैसे आज हम लोग वर्ल्ड होली नाम संकीर्तन करने जाएंगे 5-6 घंटे जितना भी समय हो, तो इसके द्वारा हजारों लाखों लोग सुनेंगे, कई प्रसन्न होंगे कि भक्त आ गए हरि नाम हम सुन रहे हैं, कई कहेंगे व्हाट अ डिस्टर्बेंस, क्या हमारी शांति को निराश कर रहे हैं, कई आपको गाली देंगे, कई कहेंगे क्यों आ गए। कई बार आप जोर से कीर्तन करो तो पड़ोसी शिकायत करते हैं, है ना, कोई पार्टी हो रही हो तो नहीं शिकायत करते, कोई बैंड बाजा शादी का बज जाए तो चलता है, पर अगर कीर्तन हो रहा हो तो कहते हैं दूसरे डिस्टर्बेंस। जब हम लोग यहाँ हरे कृष्णा लैंड में आए थे पहले, आज तो आप ये बड़ा सुंदर मंदिर देख रहे हो, पर आपको कुछ अंदाजा नहीं कि कितना संघर्ष प्रभुपाद जी को करना पड़ा। जब हम आए थे पड़ोसी लोग कहने लगे, या उनको भड़काया जा रहा था एक व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ होटल बनाना चाहता था, तो उनको भड़काया जा रहा था, बोलो ये हरे कृष्ण इज अ न्यूसेंस, ये हरे कृष्ण कीर्तन हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो हरिना में इतनी शक्ति है कि अगर कोई सुन ले किसी बहाने, कोई ये भी कह दे ये पागल हरे कृष्ण को देखो, उसे उसके द्वारा लाभ पहुंचेगा। तो यहाँ कहा जा रहा है संकीर्तन अनुलोलन कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे शुभ कार्य है। और जब आप हरि नाम में जाते हो, हरि नाम का उच्चारण करते हो, ना ही जीवात्मा को लाभ मिलता है, इसके द्वारा जो अनेक लाखों वृक्ष हैं उन्हें भी लाभ मिलता है। जैसे आपके हरे कृष्ण लैन में ये दो पेड़ हैं, आप जानते नहीं है पेड़ कितने भाग्यशाली हैं, एक रूप से आपसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। आप हफ्ते में एक बार मंदिर आते हो, आप एक आरती में आते हो, फिर भाग जाते हो मंदिर, ये देखते कैसे भाग। ये पेड़ सारा दिन भगवान का दर्शन लेते हैं, सारा दिन कीर्तन सुनते हैं, जैसे कि वृंदावन के आंगन में तमाल का पेड़ है, सारा दिन वो पेड़ जब राधा श्याम सुंदर का दर्शन लेता तो अत्यंत भाग्यशाली है। पेड़ों में भी जीवात्मा है, चेतना है, पर कम मात्रा में। तो जब आप हरि नाम संकीर्तन करते हो, मनुष्य योनि तो लाभ उठाते ही है इसका, वो जो अनेक दूसरे योनि के हैं वो भी इसका लाभ उठाकर, उन्हें भी इसका लाभ पहुंचता है, वो भी इसके द्वारा शुद्ध बनते हैं। तो यह हरि नाम जो है पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। आगे क्या कहते हैं शुक्रदेव गोस्वामी जी, कृपया इसे समझने का प्रयास करें। तो हमें इस हरि नाम की महिमा समझने का प्रयास करना चाहिए। आप जानते हो कि प्रभुपाद जी ने बल दिया ग्रंथों का वितरण करने के लिए, क्यों? कोई आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं, क्योंकि इन ग्रंथों में हरि नाम की महिमा का गुणगान है। वो हरि नाम की महिमा का गुणगान सुनोगे तो इससे आप प्रभावित होगे। जैसे अगर आज हजारों लाखों की संख्या में लोग हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, इनका परिचय तो होता है ग्रंथों के माध्यम से, जब वो ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इसमें क्या पढ़ते हैं, हरि नाम की महिमा का वर्णन। तो यहाँ कहा जा रहा है शुक्रदेव गोस्वामी जी के द्वारा, कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग उसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सकें। तो हमें बड़े गंभीरता पूर्वक होकर इस हरि नाम को स्वीकार करना चाहिए। हरि नाम के उच्चारण का लाभ तो आपको हर परिस्थिति में होगा, चाहे आप ज्ञान से लो या अज्ञान से लो, पर अगर आप इस हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो हमें गंभीरता पूर्वक या ध्यान पूर्वक होकर भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप गंभीरता पूर्वक होकर ध्यान पूर्वक होकर हरि नाम का उच्चारण करोगे तो तेजी के साथ क्या लाभ होगा, चेतो दर्पण मार्जनम। और अगर आप लापरवाही से 50 और कामों के बीच में हरि नाम का भी उच्चारण करोगे, थोड़ा सा तो लाभ होगा, पर जो मैल है हृदय में वो नहीं निकलेगी। जैसे एक समय भक्ति सिद्धांत जी से उनके शिष्यों ने एक प्रश्न पूछा, ये क्या हम देखते हैं कि कई बार तो लोग भक्ति में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और कई लोग वहां फंसे रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं 10 साल 20 साल, हम इस्कॉन में भी यही देखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत जी ने एक उत्तर दिया कथा के द्वारा। उन्होंने कहा एक बारात जा रही थी नाव में, बारात ने कहा ये लो पैसे हमको सुबह पहुंचा देना, 10 बजे शादी है। जब सुबह आई तो उन्होंने देखा मां के वहां ही है, सब चिल्लाने लगे, क्या धोखा हो गया हमारे साथ, हमें तो पहुंचना था, मेहमान आए, हम यहाँ के यहाँ है। नाव चलाने वाले ने कहा मैंने तो बहुत मेहनत की, देखो सारा रात इतना पसीना, तो क्या कारण है नाव आगे नहीं बढ़ी। फिर देखने पर पता लगा कि जो नाव का लंगर है ना उसको निकालना भूल गया। तो हालांकि मेहनत कर रहा था, नाव आगे बढ़ी नहीं। इसी प्रकार कई बार हम दीक्षा ले लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, पर हमारा जो भौतिक आकर्षण के प्रति जो लंगर है ना उसको नहीं निकालते, तो इसलिए आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा गए। तो हम सबका असली उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत हों, भगवान के चरण कमलों में समर्पण करें, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वनप्रस्थ हो, संन्यास हो, हम सबका मूल भाव ये होना चाहिए। जब भगवान गीता में कहते हैं सर्वा धर्मां परितज माम एकम शरणम जहम त्वम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये आदेश भगवान दे रहे हैं पूरे मानव समाज को, ये नहीं केवल सन्यासी या ब्रह्मचारी इसको, ये शिक्षा दी जा रही है पूरे मानव समाज को। तो अगर हम हरि नाम की महिमा को पहचाने तो हरि नाम को ध्यान पूर्वक होकर जाप करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा है आप हरि नाम का जाप तीन अलग परिस्थितियों में कर सकते हो। पहला है नाम अपराध, दूसरा है नाम भाषा, तीसरा है शुद्ध नामा। तो मतलब नाम भाषा का अर्थ है उस स्थिति में जाप करना जिसमें आप अपने आप को नाम अपराधों से बचा रहे हो और आप ध्यान पूर्वक गंभीरता पूर्वक होकर जाप कर रहे हो। कम से कम हमें उस स्थिति में रहकर जाप करना चाहिए अगर आप हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो। तो संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी जी इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। वैसे तो हम इस समय चौथा स्कंद भागवतम का पढ़ रहे हैं, कल उस पर प्रवचन देंगे, पर आज इस हरि नाम के महिमा के विषय में एक श्लोक भागवतम का चुना है, क्योंकि आज हम वर्ल्ड होली नेम डे मना रहे हैं और आप सब भक्तों से निवेदन है कि आप हरि नाम की महिमा पर विचार करो। कई बार हम सोचते हैं अरे हम तो हरि नाम के विषय में सब जानते हैं। वो कहते हैं इंग्लिश में कहावत है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अगर किसी से जान पहचान बढ़ जाए ना तो उसके प्रति आपकी इज्जत कम हो जाती है। तो एक रूप से हम सबकी हरि नाम से जान पहचान काफी बढ़ गई है। अरे हरि नाम हरि है तो हम बचपन सुनते आ रहे हैं, हम तो दीक्षित हैं, दिन रात हरि नाम की महिमा ही सुनते हैं। तो हम ध्यान पूर्वक होकर हरि नाम के गुणों के विषय में ध्यान नहीं देते, हम ये ध्यान नहीं देते कि हमें नाम अपराधों से बचना है अगर हम हरि नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, और इस कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए मंदिरों में हम रोज 10 नाम अपराधों का उच्चारण करते हैं। कई बार लोग भक्त कहते हैं अरे ये तो हम जानते हैं, रोज सुनने का क्या फायदा। असल में हर भक्त जो गृहस्थ भक्त घर में भी रहते हैं उन्हें 10 नाम अपराधों को रोज पढ़ना चाहिए और विचार करना चाहिए मैं इन अपराधों से बच रहा हूं या नहीं। मैं अगर नहीं बच रहा तो मुझे प्रयास करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र का सहयोग लेना चाहिए कि मैं इन अपराधों से बचूं, क्योंकि इसके द्वारा ही आपका हरि नाम का असली लाभ पहुंचेगा। तो हरि नाम की महिमा का हमें दिन रात सुनते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, और आप हमारा सौभाग्य है कि हमें हरि नाम प्राप्त हुआ है। पर अब हमारी योजना रहनी चाहिए कि हम हरि नाम का उच्चारण करें सावधानी से और भगवत भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? वर्ल्ड होली नेम डे में आज कौन कौन आ रहे हैं? सब आ रहे हैं, सब आइए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर हम कहें चलो एक स्थान में जहां 1000 रुपए के नोट मिलेंगे, सब लड़ेंगे हमें पहले बिठाओ। हरि नाम में जाओगे तो आपको लाखों रुपए का नोट मिलेगा, 1000 क्या है। हाँ
हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि जब अजामिल ने लास्ट मोमेंट पे नारायण बोला
क्या?
तो मैंने अजामिल जब लास्ट मोमेंट पे नारायण शब्द बोला तो विष्णु दूत आ गए।
हाय बो प्रभु, आप लोग किधर जा रहे हो? क्लास खत्म नहीं हुई अभी।
लेकिन इसके पहले भी जैसे उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा तो दिन में कितनी बार वो नारायण शब्द बुलाता था, तो उस टाइम विष्णु दूत क्यों नहीं आए?
क्योंकि इस वक्त वो खतरे में था, इस वक्त वो खतरे में था, उसको नरक में ले जाने लगे थे, तो विष्णु दूतों ने उसे बचा दिया नरक में जाने से। भगवान कहते हैं ना मेरा भक्त जो कभी भी नष्ट नहीं होगा।
जो आपने एक और बात बोली महाराज की, अगर भौतिक आकर्षण रहता है तो भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होता है, तो लेकिन ये जानते हुए भी कई बार हम भौतिक आकर्षण कम नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या कारण? हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है।
भगवान गीता में कहते हैं ये यथमाम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में कोई मेरे समर्पण करेगा उतनी मात्रा में वो मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो आप 10% समर्पण करोगे 10% भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जैसा व्यापारी भाषा में कहते हैं ना, जैसा दाम भरोगे वैसा माल मिलेगा, तो वही विचार है। जैसा दाम आप भरोगे भगवान की सेवा में उतनी कृपा प्राप्त होगी। हाँ शर्मा जी बोलो, आप बोल देना।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज अजामिल की जो कथा है ये बहुत प्राचीन ग्रंथों में से आई है कहा गया, तो ये सतयुग की घटना है या किसी और एक की घटना है?
सतयुग की घटना तो शायद नहीं है, मैं इस विषय में कह नहीं सकता। केवल भागवतम के छठे स्कंद में कहा गया है, शुक्रदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने प्राचीन पुराणों में ये सुना है
जी,
पर भागवत में ये नहीं कहा गया कौन सी युग की घटना है
जी।
तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता।
करेक्ट,
ये द्वारपा युग की घटना भी हो सकती है।
हरे कृष्णा।
हाँ
महाराज, नामापराध स्टेज में कोई आदमी अगर जप करता है तो उसको किस तरह के फायदे हो सकते हैं?
अगर क्या है,
नामापराध स्थिति में अगर कोई जप करता है तो उसको किस तरह के फायदे होते हैं, हो सकते हैं? क्योंकि जनरली हम लोगों को जब भी उत्साहित करने की कोशिश करते हैं और उनको बोलते हैं जब करो, तो हमें मालूम है कि वो लोग को किस तरह के फायदे हो सकते हैं नामापराध में जब करने से।
थोड़ा फायदा तो होगा, चाहे आप किसी स्थिति में हरि नाम का जाप करो। एक से एक ये फिल्मी कलाकार देवनंद एक मूवी बनाई थी ना, हरे रामा हरे कृष्णा। तो जब ये फिल्म रिलीज, ये फिल्म उसने बनाई थी प्रभुपाद जी के भारत आने के बाद, जब प्रभुपाद जी भारत में आए अपने विदेशी शिष्यों के साथ, और हर जगह एक आध्यात्मिक क्रांति फैल गई थी। क्रॉस मैदान में जब सत्संग होता था 30-35 हजार लोग आ रहे थे। तो ये फिल्म में दिखाते हैं लोग भंग लेते हैं और फिर भंग लेकर हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि फिल्म में हरे कृष्णा बैकग्राउंड में आता है, हमने फिल्म देखी नहीं पर यह सुना है। तो उस समय मैं प्रभुपाद जी के पास गया था कहकर ये कह, और ये कहा मैंने प्रभुपाद जी से कि ये फिल्म हमारी संस्था का नाम खराब कर देगी इंडिया में, क्योंकि ये दिखा देंगे हम भंग पीते हैं। प्रभुपाद जी कहा नहीं, नथिंग विल बी लॉस्ट, पीपल विल हैव होली नेम एंड बेनिफिट। तो होली नेम हर स्थिति में लाभदारी है, पर भगवत प्रेम जो कि जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, वो नाम अपराध के द्वारा संभव नहीं है। आप समझे, आप नाम हरि नाम के द्वारा पापों को घटा लोगे, थोड़ा आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ जाएगा, पर भगवत प्रेम, भगवान के लिए प्रेम, जिसके द्वारा वैकुंठ धाम प्रवेश कर सकते हो, जिसके द्वारा आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो, वो प्राप्त नहीं होगा। फिर से जन्म ले लोगे भौतिक संसार में, करोड़पति के घर में अच्छी सुविधा, पर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। समझे, स्वर्ग लोक में चले जाओगे। ओके, और कोई?
हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया कि अजामिल एक शुद्ध भक्त था और भगवान के लिए वो फूल लाने
गए। ये नहीं कहा शुद्ध भक्त था, मैंने ये कहा था कि वो भक्ति के नियमों का पालन कर रहा था और ब्राह्मण खानदान में उसका जन्म हुआ था।
जंगल में फूल लाने गया था तो किस तरह वो मोहित होगा वैश्य के ऊपर, और क्यों?
क्योंकि उसने वो वैश्य की घटना को देखा और फिर उस घटना का चिंतन करने लगा। तो अगर उसी प्रकार जिस विषय का आप चिंतन करोगे उसी प्रकार का आचरण प्रकट करोगे अपने व्यवहार में। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरा स्मरण करो। अगर दिन रात अगर हम स्मरण कर रहे हैं भौतिक कार्य का तो उसी प्रकार के कार्य में जुड़ोगे। प्रभुपाद जी ने कथा सुनाई थी, एक समय कलकत्ता में एक स्थान में था एक ब्राह्मण का घर और सामने था वैश्य का घर। तो ब्राह्मण तो शास्त्र पढ़ने का पखंड करता था पर दिन रात सोचते रहता था वैश्य के कार्य का, आप कौन गिरा खा रहा है, कितना समय काट रहा है वगैरह। तो आग लगी उस इलाके में जिसमें वैश्य और ब्राह्मण दोनों मर गए। तो यहां पर उतरा एक ब्राह्मण को नरक मिले जाने के लिए। तो ब्राह्मण ने कहा, आप गलत पते पर आ गए हो, आपको तो वैश्य के पास जाना चाहिए। मैं तो दिन रात शास्त्र पढ़ रहा था। तो फिर यामदूत ने कहा, आप शास्त्र पढ़ रहे थे, पखान कर रहे थे, पर मन में सोच रहे थे वैश्य के भोग विलास के विषय में। वो वैश्य पाप के कार्य में जुड़ी थी, पर दिन रात सोच रही थी कब मुझे जन्म मिलेगा ब्राह्मण के समान, वो सामने के ब्राह्मण के समान, और मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो इसलिए जो आध्यात्मिक मार्ग में सफलता चाहते हैं उन्हें मन को विवश में लाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप सावधानी से जाप करोगे, ध्यान पूर्वक गंभीरता पूर्वक जाप करोगे, फिर आप मन को भी बंधु बना सकोगे। ओके, हरे कृष्ण। तो सब आ रहे हो हरि नाम में पक्का? सबकी हाजिरी लेंगे। हरे कृष्ण, बोल दो।
हरे कृष्णा। 1 बजे महाराज का पुनः प्रवचन होगा, प्रीतिवर्धन नए बिल्डिंग प्रथम मंजिल पर। तो आप सभी लोग 1 बजे भी इस प्रवचन का लाभ लीजिए। ठीक 1 बजे नए बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पर प्रसाद होता है वहाँ पर प्रवचन जो है पुनः महाराज देंगे। आप सभी लोग इस प्रवचन में भाग लीजिए। प्रसाद के बाद सभी लोग कीर्तन के लिए आएंगे। प्रसाद लेने के बाद सभी भक्तों से निवेदन है कीर्तन में मंदिर के प्रांगण में आएंगे।
Oh, you गुरु।